नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रदेश में फसल अवशेष जलाने वाले किसान गेहूं की खरीद के लाभ से वंचित रहेंगे। आज होलिका दहन है। होली के अवसर पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। और राज्य के अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री सरावगी ने कहा कि स्वघोषणा जमा करने के लिए इस वर्ष 30 मार्च तक समय निर्धारित है। उन्होंने कहा कि विभाग इस तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। श्री सरावगी ने कहा कि सर्वे में भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों और बिचौलियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
हमारी सरकार भूमि प्रबंधन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सतत संकल्पित है। यह सही है कि विभाग जन सरोकार से जुड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा और संकल्प के हिसाब से भू सर्वे का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में कुछ बिचौली और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलियों पर भी सतत निगरानी कर रहा है। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी।
उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फसल अवशेष जलाने वाले किसान गेहूं की खरीद के लाभ से वंचित रहेंगे। उन्होंने किसानों को फसल अवशेष को जलाने के बजाय इसका उचित प्रबंधन करने की सलाह दी है। श्री सिन्हा ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान से वंचित किया जा रहा है। अब उन्हें गेहूं की खरीद के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। बार बार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। होली को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की। इधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी होली पर्व को लेकर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज होलिका दहन है। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन की परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2 दिन होने के कारण होलिका दहन के 1 दिन बाद होली मनाई जाएगी। इधर होली को लेकर प्रदेश में विशेष चौकसी बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। इधर होली पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश हैं। शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की सलाह जारी की गई है। परिषद में लोगों से टायर, रबर, मोबिल, प्लास्टिक आदि के सामान नहीं जलाने की अपील की है।
होलिका सामग्री में टायर, रबर, प्लास्टिक कचरे, जला मोबिल जैसी चीजों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फ्यूरॉन, डाइऑक्सिन, हाइड्रोकार्बन, PM2.5, PM10 जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है।
इस बार वायु प्रदूषण मुक्त होलिका मनाएं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में होली उत्सव की शुरुआत हो गई है। अलग अलग अंचलों में विशेष अंदाज में होली मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेगूसराय के मटिहानी गांव में होली से 1 दिन पहले ही अनोखी होली खेली जाती है। मथुरा वृंदावन की होली की तर्ज पर ही स्थानीय ग्रामीण प्रतियोगिता के अंदाज में होली मनाते हैं।
मथुरा वृंदावन की होली की तर्ज पर ही बेगूसराय के मटिहानी गांव में भी विशेष होली की परंपरा है। इस दौरान 7 कुओं पर रंग घोला जाता है। इन कुओं से रंग निकालकर अलग अलग टोलियां एक दूसरे पर रंग बरसाती है। प्रतियोगिता में जिस टोली की पिचकारी का रंग पहले समाप्त होता है उसकी हार होती है, वहीं जीतने वाले को सम्मानित किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गांव में 100 वर्षों से अधिक समय से यह होली मनाई जा रही है।
होली चैत में होता है, सम्मत पूर्णिमा दिन हो जाता है, चैत में होली होता है, तो दोनों दिन होली होता है यहाँ पर। पिछला हम लोग सब मना।
ग्रामीणों के अनुसार राजस्थान के मारवाड़ से आए कुछ परिवारों ने इस होली की परंपरा की शुरुआत की थी। होली की शुरुआत से 2 सप्ताह पहले से स्थानीय युवकों की टोली गांव में घूम घूम कर होली के गीत और जोगिरा गाते हैं। इससे पूरा माहौल उल्लासमय बन उठता है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि विशाखापट्टनम पटना के बीच 3 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं नई दिल्ली से कटिहार और कामाख्या, आनंद विहार जोगबनी, ग्वालियर पुरी, बरौनी उधना स्पेशल, मुजफ्फरपुर हुवल्ली, पटना बास्को डिगामा और दानापुर मैसूर के बीच भी अलग अलग तिथियों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रेलवे ने इन ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। रेल परिचालन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 डायल कर अथवा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन से या प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_patna से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं शेखपुरा का 36 डिग्री सेल्सियस और राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम चंपारण, कैमूर और बक्सर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
अगले 4 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा। 4 दिनों के बाद प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, कैमूर एवं बक्सर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष जिलों का मौसम शुष्क ही बना रहेगा।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच एम्स पटना में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में अपर प्रधानाध्यापक डॉक्टर सौरभ कर्माकर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, पक्षियों की मौत हो रही है, उन स्थानों से दूर रहें। बाजार में जैसे कि मुर्गा अथवा जो पक्षी खरीदने बाजार में जाते हैं उन बाजारों से दूर रहें। अगर आप उन स्थानों में जाते हैं तो N95 का मास्क पहन के जाएं, निरंतर हाथ धोते रहें। इसके लिए एक और सावधानी बरतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि मांस का सेवन इस सीजन में अगर आप कर रहे हो तो 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में तापमान पे पका के खाएं। कच्चे मांस के पदार्थ अथवा कच्चे अंडे या मेयोनेज का प्रयोग न करें।
पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद क्षेत्र में 9000 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस राशि से नाली, गली और सड़क निर्माण समेत अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिला परिषदों के उप विकास आयुक्तों से मौजूद संसाधनों का उपयोग कर आय के नए स्रोत विकसित करने को कहा है। उन्होंने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि DDC को जिला परिषद की जमीन का भौतिक सत्यापन और दाखिल खारिज के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 से पहले आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वैश्विक समुदाय से संपर्क करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एकीकृत वैश्विक मंच के रूप में वेब्स की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करना है। कार्यक्रम में 100 से अधिक राजदूत और उच्चायुक्त एवं मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियां शामिल होंगी। वेब शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय युवा लेखकों का मार्गदर्शन करने वाली योजना पीएम युवा 3.0 के अंतर्गत लेखकों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। यह प्रतियोगिता 10 अप्रैल तक MyGOV वेबसाइट पर आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 50 लेखकों का चयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन इस वर्ष अप्रैल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी 6G तकनीक विकसित हो रही है, जिसके वर्ष 2030 तक आने की उम्मीद है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारत का 6G भविष्य मसौदा किफायती और सर्वव्यापकता के सिद्धांतों पर आधारित है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, सदन को वर्ष 2005 से पूर्व और बाद का हाल बताएंगे। दैनिक जागरण ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की खबर पर लिखा है, पाकिस्तानी सेना का दावा, ऑपरेशन हुआ खत्म, 33 बलूच विद्रोही मारे गए। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, होली से पहले ही 3 राज्य लू की चपेट में, अगले हफ्ते 4 और राज्यों में थपेड़े। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, प्रदेश में फसल अवशेष जलाने वाले किसान गेहूं की खरीद के लाभ से वंचित रहेंगे। आज होलिका दहन है। होली के अवसर पर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। और राज्य के अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, पिछले 24 घंटों के दौरान 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जायेगा।